ओम शांति। संसार में सबसे ज्यादा नाम किसका है? आज माँ बाप बच्चों को कोई नाम देते हैं, जब वो स्कूल में जाता है उनके दोस्त लोग उसको कोई निकनेम दे देते हैं, कोई रिश्तेदार साथी कोई नाम दे देते हैं, एक का दो नाम, तीन नाम, चार नाम भी हो सकता है ना नहीं? परंतु सबसे ज्यादा नाम किसका है? भगवान का है, इसलिए उनको नाम बर भी कहते हैं। बाबा के कितने नाम है जानते हैं? बाबा के हजार नाम है, इसलिए भक्ति में एक पुस्तक मिलता है शिव सहस्र नाम। शिव के हजार नाम है, उसके संस्कृत अगर पढ़े होंगे आप सभी, अमर कोश में हजार नाम लिखा है। संभूरी सपशुपति सी वसुलीन महेश्वर शंकर सर्व ईशान गिरी सगिरी समृढ़, आप एकदम लंबा आप सुनेंगे ना, हजारों नाम है। मेरे पास किताब है, पढ़ा हूं सारा, लेकिन सब कुछ याद तो नहीं है। लेकिन बाबा के जो इतने नाम है, ये सारे नाम बाबा के गुणवाचक व कर्तव्यवाचक नाम है। बाबा संसार में आके जो महान कर्तव्य करके जाते हैं, जो हम आत्माओं को जो चीजें देते हैं, उसी आधार से बाबा के अनेक नाम है। यहाँ जितने हैं सभी एक एक बाबा का नाम सुनाएंगे, देखते हैं कितने नाम आता है सभी को। सोमनाथ, और बताओ, महाकालेश्वर, विश्वनाथ, एक 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 ही साथ, एक ही साथ, एक ही साथ। हाँ सुनो, हाँ, नागेश्वर, बद्रीनाथ, बाबूरनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, त्रयंबकेश्वर, रामेश्वर, या तो ईश्वर या तो नाथ, है ना नहीं? बाबा के बहुत सारे नाम है जिसमें या तो ईश्वर होगा या तो नाथ होगा। महाकालेश्वर, महाकाल कहते हैं, महाकालेश्वर भी कहते हैं। हाँ, और भी बहुत सारे नाम है, और वैद्यनाथ, और बताओ। मैं जो नाम चाहता हूँ अभी तक आया नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। मल्लिकार्जुन, योगेश्वर, योग सिखाने वाले, और शिवा, और वैद्यनाथ, हाँ, और सत्यम शिवम सुंदरम, अच्छा, पाप कटेश्वर, अमरनाथ, और बताओ, विश्वनाथ, प्राणेश्वर, और बताओ, और बताओ, और बताओ, ओंकारेश्वर, और बताओ, बद्रीनाथ, और बताओ, और बताओ, नहीं आया, मैं जो पूछ रहा हूँ, दृढ़ेश्वर, गोपेश्वर, और कुछ है? और बताओ, नहीं आया। मैं तो कहाँ कहाँ घूमता हूँ, ऐसे ऐसे नाम है शिवा वगैरह, बहुत से उसके पेट फट जाएगा। आप वहां मार्केट में कभी गए हो? वहां धड़ा धड़ महादेव नाम रखा है, धड़ा धड़ फटाफट, ऐसे सब कितना क्या क्या नाम रखते हैं लोग, तो हंस हंस के पेट फट जाएगा आपका। लेकिन बाबा के बहुत सारे नाम में से अब वो नाम आपको नहीं आएगा, देखता हूँ फिर भी पूछता हूँ, और बताओ, और बताओ, क्या नाम? भोलेनाथ, और बताओ, भूतेश्वर, गंगेश्वर, और बताओ, मल्लिकार्जुन, और बताओ, भूतनाथ, और बताओ, और नहीं, और बताओ, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं आया अभी तक। चलो बता देता हूँ, बाबा का एक नाम है नटराज। अच्छा, नटराज कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसका क्या अर्थ है? नटराज बाबा को क्यों कहा गया है? जो जितना सारे नाम है वो एक एक नाम का कुछ ना कुछ अर्थ है। नटराज माना नट किसे कहा जाता है? नहीं, आप देखे होंगे छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहर में कुछ लोग आते हैं रास्ते में, दो ऐसे बांस गाड़ देते हैं, उसमें रस्सी बांध देते हैं, उसके ऊपर जो ट्रिक्स दिखाता है उसको बैलेंस करके चलता है, उसको नट कहते हैं। ट्रिक्स दिखाने वाले जो बैलेंस की कला दिखाता है उसको नट कहा जाता है, बैलेंस का कला जो दिखाता है। तो जैसे बाबा का नाम है वैद्यनाथ, वैद्य माना पहले प्राचीन काल में डॉक्टर को वैद्य कहते थे, जो दुनिया में जितने डॉक्टर है वो सभी वैद्यों का वो नाथ है ना। जैसे बाबा का नाम है योगीश्वर, योगेश्वर, ब्रह्मा बाबा को योगेश्वर कहते हैं लेकिन शिव बाबा का नाम योगीश्वर है, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा है, हमारे गीत है सुने होंगे। तो योग का जो मास्टर है, योग का जो ईश्वर है, जो मेडिटेशन करने में जो सबसे होशियार है वो ब्रह्मा बाबा है, उन जैसे तपस्या कोई नहीं किया। तो ब्रह्मा बाबा को इसलिए योगेश्वर कहा जाता है लेकिन शिव बाबा को योगीश्वर कहा जाता है, अर्थात जितने योगी है दुनिया में वो सभी का मास्टर ईश्वर है। इस प्रकार जितने दुनिया में डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उनका वो नाथ है, सबसे सुप्रीम सर्जन शिव बाबा है। इस प्रकार नटराज माना दुनिया में जितने भी ट्रिक सिखाने वाले हैं, ऐसे बैलेंस की कला सिखाने वाले दिखाने वाले हैं, उनका सबसे वो राजा है, माना सबसे ज्यादा बैलेंस दिखाने वाला वो है ना। नहीं तो ये एक कर्तव्यवाचक नाम है, क्योंकि आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, उसमें भगवान वाच है, हे अर्जुन इस संसार में मुझे तीनों लोकों में तीनों कालों में ऐसा मेरे लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं है जो कर्तव्य मुझे करना है, परंतु फिर भी मुझे लोक संग्रह अर्थ इस संसार में आना पड़ता है और मुझे लोगों को श्रेष्ठ कर्म क्या है करके दिखाना पड़ता है ताकि लोग उसको अनुकरण करें, वो भी अपने जीवन में अच्छा श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ बने। तो भगवान को करके दिखाना पड़ता है, तो भगवान इस संसार में आके हमें बैलेंस सिखाते हैं, बैलेंस की कला सिखाते हैं, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति बैलेंस रखता है उसका ही जीवन ब्लिसफुल होता है। ब्लिस माना आनंद, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत खुशी जिसको होती है उसको ब्लिस कहते हैं। तो आप देखना गांव में वो जैसे वो रस्सी के ऊपर चलता है, देखने वालों को कितनी खुशी होती है। सर्कस में क्या दिखते हैं हम, सर्कस में बैलेंस दिखाते हैं, सब कई प्रकार के बैलेंस दिखाते हैं, तो हजारों रुपया टिकट देके लोग जाके देखते हैं, तालियां बजाते हैं, खुशी हो जाए, लेकिन जो दिखाता होगा उसको कितनी खुशी होती होगी, देखने वालों को इतनी खुशी, तो जो दिखाता है कितनी खुशी होती होगी। तो जो बैलेंस करना जानता है उसको बहुत खुशी होती है। सो बैलेंस गिव्स यू ब्लिस, एक्सट्रीम ब्लिस, ब्लिसफुल स्टेज अनुभव कर सकते हैं। और जो बैलेंस करता है उसको सबसे ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होती है। सभी और को दुआएं देते हैं, वाह वाह करते हैं, पैसा देते हैं लोग, है ना, नहीं ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जीवन में बैलेंस रखना बाबा हमें सिखाते हैं। आज जो डॉक्टर्स कहते हैं आपको आश्चर्य होगा, वो सारी बातें हमारे बाबा कल पहले जो कहे थे, हमारे श्रीमद् भगवद गीता में जो लिखा गया है वही बात को आज साइंटिस्ट लोग प्रूफ करके बता रहे हैं कि हाँ यही ठीक है। बाबा ने कल्प पहले कह के जो महावाक्य हमको पढ़ा के गए थे, सुना के गए थे, उसको श्रीमद् भगवद गीता ने किसी ने लिखा है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वाच है, हे अर्जुन अति आहार अनाहार योगी का लक्षण नहीं है। अभी मिला तो एकदम मनपसंद का खा लिया, अकंठ भोजन, औड़ी करते समय पूरा गैस निकलते समय ये तो इतना तो खा लो, आ करने से दिखेगा वो योगी का लक्षण नहीं है। एकदम भूख हड़ताल, तीन दिन तक उपवास करना, बाबा ने हमें उपवास करना नहीं सिखाया। तो योगी माना बैलेंस्ड भोजन। इस प्रकार बाबा ने कहा है कि योगी अर्थात अति निद्रा, अनिद्रा योगी का लक्षण नहीं है। बिल्कुल नहीं सोना, नहीं तो छुट्टियां हैं तो पूरा बस 20 घंटा सोते रहना, वो भी योगी का लक्षण नहीं है। योगी माना बैलेंस जीवन वाले। तो वही आज वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं, आज दुनिया में जो वर्तमान सारी बीमारियां हो रही है ये मनुष्य जीवन में एक बहुत बहुत बड़ी बात की कमी है। आज आज मनुष्य जीवन में भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, जैसे कि सब कुछ लेके जाएंगे साथ में। जब आदमी मर जाता है कुछ भी साथ में नहीं जाता है। तो जीवन में हम आज बैलेंस खो दिए हैं, जिसके कारण बहुतों को आज बहुत सारी बीमारियां हो रही है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। अमेरिका में 50% लोगों का जीवन बैलेंस नहीं है, 50% से भी ज्यादा लोगों का जीवन बैलेंस नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा तनाव है उनको। भले पैसा कमाते हैं, 7 दिन में से 5 दिन गधे जैसा काम करेंगे, 20 घंटा, कुछ खाना पीना ठिकाना नहीं, सोना ठिकाना नहीं, परिवार के कोई है कि नहीं ठिकाना नहीं, फिर 2 दिन छुट्टियां, तो जितना पैसा कमाया सब लेके भाग जाएंगे कहीं, पूरा समुद्र के किनारे में जाके पी पा के खा पी के सुधबुद नहीं, तो जितना 5 दिन कमाया सब गवा के फिर 5 दिन तक गधे जैसा जीवन। तो उनका जीवन में बिल्कुल बैलेंस नहीं है, साइंटिस्ट कहते हैं। तो आज अधिकतर लोगों के जीवन में बैलेंस नहीं है। बाबा को नटराज इसलिए कहा जाता है कि बाबा हमें बैलेंस की कला सिखाते हैं। तो जीवन में क्या क्या बैलेंस रखें हमें सिखाते हैं। जिसका जीवन में बैलेंस नहीं है उसका परिणाम, जैसे कोई चल रहा है बहुत सुंदर बढ़िया बैलेंस करके, सब तालियां बजा रहे, वाह वाह वाह, गिर पड़ा तो चकनाचूर, हड्डी पसली चूर चूर। तो जो बैलेंस करना नहीं जानता है उसके जीवन में तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, और फिर उसके परिणाम क्या होगा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सब आजकल जो कैंसर, जो बीमारियां हैं, इसका परिणाम ये, क्योंकि जीवन में बैलेंस नहीं है। तो बाबा हमें क्या क्या बैलेंस सिखाते हैं। बाबा हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, व्यवसायिक जीवन अर्थात प्रोफेशनल लाइफ, ये सब बातों का हमें बैलेंस सिखाते हैं। जो व्यक्ति ये सब का संतुलन करना जिसको आता है तो वो जीवन में सदा आनंदमय स्थिति में रहता है, खुश रहता है। जिसके जीवन में बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं गिर पड़ता है तो कैसा होगा सोचिए। तो इसलिए बाबा को नटराज कहा जाता है ना। नहीं तो योगी जीवन, योगी और भोगी में क्या अंतर है। योगी अर्थात बैलेंस्ड लाइफ, जिसका जीवन संतुलित है, जिसका जीवन खाने पीने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, क्या कर रहा है ठिकाना नहीं, कोई जैसे मर्जी, जैसे जानवरों का जीवन भी संतुलित है। अब देखना कोई भी पंछी को अलार्म लगाना पड़ता है उठने के लिए, शाम को समय में कोई उसको टेलीफोन करके बुलाता है घर आओ, अभी शाम होते ही सब चिड़िया सब उड़ के आके अपने घोंसले में घुस जाए, और 1 बजे तक लोग अपने घर में नहीं लौटते हैं, रात भर किधर किधर भूत की तरह घूमते रहेंगे। तो आज मनुष्य के जीवन में बैलेंस नहीं है, लेकिन जानवरों के जीवन में बैलेंस है। आप देखना कोई शेर का अगर पेट भरा हुआ है उसके बगल में कोई आदमी भी जाएगा खाएगा नहीं, कभी नहीं आक्रमण करेगा, उसका पेट जब तक भरा हुआ, भूख लगता है जाके किसको मार के खाता है। और अभी अभी ब्रह्मा भोजन खा के आए हैं, फिर कोई गुलाब जामुन दे देना फिर से फट से, फिर से 2-3 निकल जाएंगे, तो इसको योगी कहेंगे नहीं। तो जानवरों के जीवन में भी बैलेंस्ड है उसका। सभी देखिए बहुत सुंदर उनको जीवन में, कब सोना, कब उठना, कब खाना, उनके खाने पीने का भी निर्धारित चीज होती है, जिनको जो खाना है वही खाते हैं। लेकिन आज मनुष्य तो सब कुछ खा जाता है, ऐसा चीज नहीं है जो मनुष्य नहीं खाता होगा, मैं आपको बता रहा हूं। एक भाई को मैं पूछा कि आप शाकाहारी हो, कहता नहीं। मैं बोला कि अच्छा तो फिर तो आप मांसाहारी हो, कहता नहीं। मैं तो सोच में पड़ गया कि फिर क्या हो, तो कहता मैं सर्वाहारी हूं, सब कुछ खा जाता हूं, जो मिलता है खा जाता हूं। अब वो ग्रीनिस्ट बुक जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड का बुक देखो, लोग तो ट्रक भी खा जाते हैं, एक आदमी ट्रक खा गया, एक ट्रक खा गया पूरा। आप सोचो, मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ। आप मुजफ्फरपुर जाओ, वहां रामनवमी के दिन में पहुंचा था मैं। वहां इतने झांकियां, ऐसा ये ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट ऐसे हाथ में पकड़े हैं, सिर पे ऐसा तोड़ के फोड़ के ऐसे ककड़ी जैसा खा रहे हैं ट्यूबलाइट। लोग तो खा रहे हैं सब, मैं देख रहा। आप सोच के हैरान हो जाओगे क्या क्या कर रहे हैं लोग, तो सोच नहीं सकते हो। तो इसलिए दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, ये संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक है भोगी, दूसरे है योगी। हम बाबा के बच्चे कौन है? योगी। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में करोड़ों मनुष्य में से जो योगी है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, हे अर्जुन, इसलिए तू योगी भव। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगीर भव अर्जुन, योगस्थ गुरु कर्माणि। तो कर्म करते समय भी योग कर, योगयुक्त होके कर, निरंतर योगी हो जा। तो योगी अर्थात बैलेंस्ड जीवन वाले, जिसके जीवन में संतुलन नहीं है वो योगी नहीं है। जिसके जीवन में कोई समय की मर्यादा नहीं, टाइम ठिकाना नहीं, कुछ भी खाता जा रहा है, कुछ भी करता जा रहा है, उसका जीवन तो जानवर से भी बदतर है, मैं कहूंगा। तो जिसका जीवन संतुलित है वो निरोगी है। तो इसलिए योगी निरोगी होता है, भोगी रोगी होता है। आज दुनिया में सभी भोगी हैं, इसलिए सभी रोगी हैं। और हम बाबा के बच्चे जब बाबा से, नटराज से योग की कला के साथ साथ जब संतुलन रखने की कला सीख जाते हैं, 21 जन्म तक निरोगी रहते हैं। तो बाबा हमें कौन सा बैलेंस सिखाते हैं? बाबा हम सभी को एक एक नट बनाते हैं, जगलर बनाते हैं। जगलर जानते हो, इंग्लिश में कहते हैं, सर्कस में देखे होंगे, एक आदमी ऐसा 5-6 बल ऐसा 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 करता है, हम 2 बल करेंगे तो गिर जाएगा, लेकिन एकदम करता रहता है। हमारे मधुबन में भी कई भाई हैं, करते हैं ऐसे। तो हर एक के जीवन में 5 बल है जो हम सभी को करना सीखना जरूरी है। वो 5 बल कौन से? जो 5 बल को जगलिंग करना जान गया है वो मास्टर नटराज है। 5 स्वरूप और कुछ, 5 बातें, 5 बातों का जो बैलेंस रखता है, जगलिंग करना जानता है, और उसमें से 4 बल शीशे का है और 1 रबर का है। तो 5 ऐसे बल है जो हरेक को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। वो 5 बातें कौन सी है? 5 चीजें है वो। एक है व्यक्तिगत जीवन, दूसरा है हमारा स्वास्थ्य, तीसरा है हमारा परिवार, चौथा है हमारे पड़ोसी सोशल लाइफ, हमारे समाज, हमारे सामाजिक जीवन, और 5वां है आत्मा। एक है कर्म, जो व्यक्तिगत जीवन बताया उसमें कर्म, हमारा कर्म, सारे दिन में जो कर्म करते हैं प्रोफेशन के लिए या धंधाधोरी जो करते हैं, एक है कर्म, दूसरा है हमारा स्वास्थ्य, तीसरा है हमारा परिवार, चौथा है हमारे फैमिली जो बताया, सोसाइटी, हमारे समाज, अड़ोस पड़ोस, और 5वां है हमारी आत्मा। तो इसमें से एक ही बल है जो रबड़ का है। वो 5 बातों में से कौन से बल रबड़ का है? ये 5 को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, दूसरा हमारे हेल्थ को भी संभालना पड़ेगा, तीसरा हमारा परिवार को भी देखना पड़ेगा, चौथा अड़ोस पड़ोस में रहते हैं भाई चारा होकर रहना पड़ेगा, और हमारे बाबा हमें एक्स्ट्रा एक सिखाते हैं जो हमारी आत्मा का भी साथ साथ कल्याण करना है ना। नहीं, हरे को ही सारे 5 बातें देखना ही पड़ेगा। हम सभी एक एक जगलर है, ये एक भी बल नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। नहीं, इसमें से एक बल वो रबड़ का है, वो गिर जाए तो भी चलेगा, बाकी सब शीशे का है। जो शीशे का बल अगर गिर गया तो टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो शीशे का बल आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा, एक खाली रबड़ का बता दो, बाकी तो शीशे का ही आपको समझ में आ जाएगा। एक ही बल है जो रबड़ का है, जो हाथ से गिर गया तो कोई बात नहीं, आत्मा टूटेगी नहीं, अजय रामो रक्षा अविनाशी नहीं। वो बल है हमारा काम, जो कर्म करते हैं। अगर एक दिन कोई काम नहीं किया तो कल कर देंगे, कोई बात नहीं। अगर मिस हो गया, अगर बिगड़ भी गया तो कल सुधार दोगे, लेकिन अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया कितना दिन लगता है, कभी कभी ठीक नहीं भी होगा। स्वास्थ्य अगर किसी का खराब हो गया तो कितना पैसा भी जाएगा, कितने परेशानियां सबको, कितना, ठीक है ना। स्वास्थ्य शीशे का बल है, स्वास्थ्य को नहीं बिगाड़ना चाहिए, संभाल के रखना है। तीसरा, हमारे परिवार, परिवार में लोग दिन रात पागल की तरह, आज आप देखोगे हमारे हॉस्पिटल में आते हैं बुढ़ा बुढ़ी जवान बेटा को लेके आए हैं, पूरा ड्रग एडिक्ट, हेरोइन ले रहा है, मॉर्फिन ले रहा है, माँ बाप को पैसा मांग रहा है, दो पैसा, रिटायर्ड एज में पैसा नहीं दिया तो मर, क्योंकि वो बच्चा जब छोटा था आया भाई को देके पैसा पैसा पैसा, मेरे बेटा के लिए पैसा रखूंगा, रिटायर्ड एज तक वो बच्चा को आया भाई संभाल रहा है, क्या सिखाएगा, माँ बाप दोनों लगे हुए हैं पैसा, फैमिली को देखा नहीं कभी, और जब रिटायर्ड होते हैं देखा तो बच्चा पूरा बिगड़ गया है, फिर उस समय रोते रहो। तो परिवार एक बार बिगड़ गया, बिखर गया, तो फिर उसको संभालना ठीक नहीं होगा, तो हम परिवार के लिए भी समय देना पड़ेगा। एक बहुत और एक सुनाता हूँ, अच्छी बात है, एक हमारे डॉक्टर फ्रेंड सुना रहा था, तो उसका घर में ही क्लिनिक था, घर में ही क्लिनिक था, तो 24 घंटा पेशेंट पेशेंट आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, छोटा सा बच्चा था, तो छोटा सा बच्चा पापा 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 आता है, बोला ना क्लिनिक में कभी नहीं आना, ले 100 रुपया ले पा, तो बच्चा पैसा लेके चला जाता था, थोड़े समय के बाद फिर पापा पापा पापा, तो नेचुरली छोटे बच्चों को तो होगा ना, बोला ना इधर नहीं आना, जा ले 100 रुपया, तो जब भी आए उसको 100 रुपया पकड़ा दे, जब भी आए 100 रुपया पकड़ा दे। तो बहुत दिन गया ऐसे, एक दिन बेटा आएगा आता है कि पापा पापा, बोला ना नहीं आया, इधर ले पैसा, नहीं थे, कहता है तुम एक घंटे में कितना पैसा कमाते हो, इतना छोटू सा बच्चा कहता है एक घंटे में कितना पैसा कमाते हो, 2000 कमाता हूँ, कितने दिनों से 100-100 रुपया नोट रखा था, 2000 रुपया कहता लो 2000 रुपया मुझे एक घंटा दो। कहने का मतलब है बच्चों को आपका पैसा नहीं चाहिए, पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, तो हमें अपने परिवार के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, उनकी समस्या समझाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सबके साथ। बहुत घर में परिवार एक स्वर्ग होता है, घर घर जब अगर स्वर्ग होगा तो ही संसार स्वर्ग होगा, हमारे घर को ही हम नरक बना के रखें तो स्वर्ग कहां से होगा, तो परिवार को भी ठीक रखना पड़ेगा। परिवार में जहां सब खुश है उनको बीमारी होगी, आज देखो घर में परिवार कैसा है, हर एक सभी दुनिया में कैसे हालत है देखो, तो माँ कैसे, बाप कैसे, बच्चे कैसे, कैसा हालत है पूरा, तो परिवार को भी समय देके संभालना पड़ेगा। परिवार भी एक बल है, वो शीशे का बल है, ठीक है। तीसरा हमारे समाज, चौथा हमारा समाज, अड़ोस पड़ोस भाईचारा होके रहते हैं, जिस गली में मोहल्ले में रहते हैं सबके साथ प्रेम प्यार से सहयोग देते सहयोग लेते हुए हमारा सोशल लाइफ बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। नहीं तो कई लोग मर जाने के बाद तो अच्छा हुआ मर गया, और कई लोग तो कितने सालों तक सभी कितने याद करते रहते हैं, है ना। नहीं हमारा जीवन ऐसा हो, बाबा कैसे सिखाते हैं, जब हम जन्म लेते हैं सब सब हंसते हैं और हम रोते रोते आए, जब हम मरे सब रोए हम हंस हंस के जाए, ऐसा जीवन होना चाहिए। तो समाज में समाज के साथ सबके साथ भी मिलजुल के हमें उसको भी संभालना पड़ेगा, वो भी एक शीशे का बल है। और लास्ट है हमारी आत्मा, बाबा कहते अभी नहीं तो कभी नहीं तो कभी नहीं तो कभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर और नेवर और नेवर, संगम युग एक ही बार, इस कल्प में कुछ नहीं किया आत्मा के लिए तो कल्प कल्पांतर रोना पड़ेगा, जो करना है अभी, जो करना है अभी, आज आज ही करना है। तो संगम युग लोग तो अभी भी अज्ञान निद्रा में सोए पड़े हैं, हम सभी कितने भाग्यशाली हैं बाबा के बच्चे, बाबा हमें जगा दिया अज्ञान निद्रा से, तो अभी हमें आत्मा का भी ज्ञान हो गया, आत्मा को कैसे भरपूर करना है ताकि सारा कल्प फिर एकदम सुंदर पुरुषार्थ करके उच्च पद पाए, वो देखना है। वो भी अगर अभी हाथ से टूट गया तो गया, तो सिर्फ एक कर्म है जिसको आप छोड़ भी सकते हो, गिर गया तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर देंगे, बाद में कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम वो उसको नहीं छोड़ते हैं, बाकी भले छूट जाए हाथ से, लेकिन शीशा हो या दिल हो आखिर अगर टूट गया तो फिर तो रोना पड़ेगा, है ना। नहीं तो जीवन में बैलेंस रखें। तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको सुनाऊंगा जिसका बैलेंस कैसे करें, क्या करें, जो बाबा ने हमें सिखाया, क्योंकि ये सब दुनिया वालों को कोई नॉलेज नहीं है। विज्ञान में हम उनको पढ़ा रहे हैं अभी कि आज स्ट्रेस के कारण लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो रहा है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है कि आज 60% जो बीमारियां हैं ये हमारे मनुष्य जीवन में बैलेंस की कमी, टेंशन हो रहा है इसके कारण हो रहा है। लेकिन कैसे बैलेंस रखें किसी को पता ही नहीं। जीवन में बाबा ने हमको बहुत कुछ खजाना दिया है, बाबा कहते हैं इसका सदुपयोग करो, संभालो ठीक से, तो जीवन में अभी ही प्राप्ति अनुभूति करोगे। बहुत सुंदर तीन खजाने हैं जो है समय, संपत्ति और स्वास्थ्य। ये तीन खजाने बहुत ही अमूल्य है। ऐसे तो बाबा ने बहुत सारे खजाने हमको दिया है, लेकिन ये तीन बातों का आज तीन तीन बातें सुनाऊंगा। ये तीन बातों का अगर हम बैलेंस रखेंगे तो जीवन में बहुत आनंद आएगा। देखो ब्राह्मण जीवन है एकदम मौज ही मौज है, फिर मास्टर नटराज बनकर आप ही बैलेंस की कला सबको सिखाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो सबसे पहले समय, समय टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। आजकल आप देखना जाके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में सब ये सब सिखाते हैं, लेकिन बाबा ने हमको कितना सहज सिखाया है। मनुष्य जीवन में समय को जो बैलेंस करना जानता है, उसको मैनेज करना जानता है, उसको कभी भी टेंशन नहीं होगा, बहुत सुंदर जीवन वो जी सकेगा। बाबा हमें, बाबा ने कहा दुनिया में सबसे बड़ा वीआईपी कौन है, कौन है सबसे बड़ा वीआईपी? हम बाबा के बच्चे। तो वीआईपीओं का क्या होता है देखे होंगे, एक प्रेसिडेंट होगा, एक गवर्नर होगा, वो तो क्या करता है, मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाता है उसका। अब देखना अभी गवर्नर साहब इस समय में फ्लाइट में बैठेंगे, इस समय वहां पहुंचेंगे, उस समय उनका ब्रेकफास्ट होगा, उस समय उसके बाद ये मीटिंग होगी, ऐसा होगा, पूरा एकदम मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है। दुनिया में सबसे बड़ा वीआईपी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम बाबा के बच्चे हैं। वो तो दुनिया में वीआईपी कहते हैं, बाबा कहते हैं क्या, वेरी इग्नोरेंट पर्सन, उनको कोई पता ही नहीं, उनको कुछ भी नॉलेज ही नहीं, मैं कौन हूं पता नहीं, तो और क्या पता दुनिया क्या है पता नहीं। तो हमारा भी बाबा कहते हैं समय का कैसे मैनेज करो। देखो ये सामने ही हमारे दिनचर्या एकदम टाइम टेबल लिखा हुआ है, कब उठना है, कब सोना है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे इसमें नींद, स्लीप, दुनिया में स्लीप मैनेजमेंट भी सिखाते हैं, क्योंकि बाबा ने जो 24 घंटा तो सबके लिए है दुनिया में, ये 24 घंटा में से हमको कौन सा समय कैसे यूज करना है बाबा ने हमें सिखाया है। दुनिया वाले तो बेपेंदे के लोटे जैसा है, लोटा का नीचे अगर वो पेंदा नहीं होता है तो क्या होगा, इधर उधर लुढ़कता रहता है। जिसको टाइम मैनेजमेंट पता नहीं है, कोई भी आएगा कहेगा क्या कर रहे हो, चलो ना थोड़ा नाकी लग घूम के आएंगे, चलो चलो थोड़ा वो तिब्बतियन मार्केट आएंगे, चलो जिसको जहां जिधर लेके आया उधर। लेकिन जिसको टाइम टेबल अपना पता है, नहीं इस समय मुझे योग करना है, इस समय मुझे क्लास में जाना है, इस समय मुझे खाना खाना है, इस समय ये करना है, तो कभी भी नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं होगा। क्योंकि बाबा ने कहा है ब्राह्मण अर्थात एक्यूरेट जीवन जीने वाले, जो दिनचर्या बाबा ने हम सभी बच्चों को बताया है, अगर उस दिनचर्या के अनुसार नहीं चलते हैं तो भी बाबा ने कहा वो भी अपवित्रता है। अगर पवित्रता की संपूर्ण परिभाषा पढ़ेंगे, अगर हम मुरली सुनते समय सो रहे हैं, सोते समय खा रहे हैं, खाते समय और कुछ कर रहे हैं, ये योगी जीवन नहीं है। बाबा ने सवेरे कब से जागना, कब कब क्या करना हमें दिनचर्या दिए हैं, उसी अनुसार अगर हमारी दिनचर्या है एक्यूरेट, क्योंकि ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। जो इतने सारे दैवी गुण है, वो दैवी गुणों में से सिर्फ एक दैवी गुण अगर जीवन में आ जाएगा तो हम संपूर्ण सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। कौन सा दैवी गुण? वो सबसे पहला जो लिखा है, एक्यूरेसी, एक्यूरेट। एक्यूरेट माना क्या? जो जैसा होना चाहिए ऐसा ही, माना मुझे जैसा बोलना चाहिए ऐसा ही बोल रहा हूं, जैसे पहनना चाहिए ऐसा ही पहना हूँ, जैसे चलना चाहिए ऐसे ही चल रहा हूँ, जैसे ही सोना चाहिए ऐसे ही, श्रीमत अनुसार अगर बाबा जैसा कहते हैं जैसा चाहते हैं ऐसा ही है, तो ना उसको कहते हैं एक्यूरेट। जो एक्यूरेट हो गया वो परफेक्ट हो गया। सिर्फ एक्यूरेट अगर जीवन में हम एक्यूरेसी आ जाए, यथार्थता आ जाए, तो हम सर्वगुण संपन्न हो जाए। इतने सारे गुणों की याद रखने की जरूरत नहीं। तो इसलिए देखो ब्रह्मा बाबा का जीवन कितना एक्यूरेट था। हमारी लच्छू दादी कहती थी बाबा को 2 बजे के बाद कभी भी सोते हुए नहीं देखा खटिया में। बाबा का जीवन एकदम टाइम टेबल फिक्स था। हमारी चक्रधारी दीदी जो दिल्ली में रहती है कहती थी एक बार हम सेवा करते करते रात को 12 बज गया, हम सो गए अमृतले उठे नहीं, लेकिन मम्मा जो दिनचर्या 2:30 बजे उठना था एक्यूरेट 2:30 बजे उठी। तो चक्रधारी दीदी बता रही थी कि मैं नेक्स्ट डे फिर दीदी मम्मा को पूछी कि मम्मा अब सारा रात तो इतना देर तक हम सेवा किया अब फिर भी वही 2:30 बजे उठे। तो मम्मा ने क्या कहा जानते हो? मम्मा ने कहा कि देखो बाबा ने कहा है 11 बजे तक सो जाना चाहिए, हमारे यहाँ दिनचर्या 10 बजे लिखा है, 10:30 तक तो सो ही जाना चाहिए, चलो ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक। तो हम 12 बजे तक जागते रहे, अर्थात बाबा की एक श्रीमत का हम उल्लंघन किए। अगर मैं फिर मेरे अमृत वेला सोया रहूंगा तो फिर क्या होगा? 2 श्रीमत उल्लंघन हो जाएगी। इसलिए नहीं, तो एक्यूरेट माना बाबा जैसा चाहते हैं ऐसा, ठीक है। तो हमारी दिनचर्या में समय को कैसे मैनेज करें वो बाबा हमें सिखाते हैं। बाबा कहते हैं 3 हिस्सा करो, 24 घंटे को 3 हिस्सा करो, 8-8 घंटा, 8 घंटा अपने लिए दो, अर्थात उसमें से सोना, खाना, पीना, नहाना, धोना, रिलैक्स होना, जो भी 8 घंटा अपने लिए, ठीक है। 8 घंटा सेवा, चाहे हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो करते हैं, जीने के लिए तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, चाहे गवर्नमेंट जॉब करो चाहे प्राइवेट जॉब करो, 8 घंटा जॉब के लिए देना है। अगर हम समर्पित हैं तो भी कम से कम 8 घंटा सेवा तो बाबा की यज्ञ का करना ही है, नहीं तो बोझा चढ़ेगा, बोझा चढ़ेगा। दुनिया में आपको बताता हूं एक बात, यहाँ एक बैंक ऑफिसर, यहाँ माउंट में कितने सारे बैंक हैं, कोई एक कौन सा बैंक थे, बैंक का मैनेजर है, आए थे मेरे पास डायबिटीज पेशेंट। तो मैं उनको दवाई लिखा तो कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ी सस्ती दवाई लिखो ना। तो मैं बोला कि आप तो बैंक मैनेजर हो, आपको पैसा की क्या कमी है? तो कहते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो, मुझे जितना भी पैसा मिलता है तनख्वाह, यहाँ एक तो मकान मिलता नहीं है, इतना किराए पे एक मकान में रहता हूँ, इतना महंगा है, एक गेस्ट आता है तो उसको रखने के लिए जगह नहीं, दूसरी बात यहाँ सब्जियों से लेके इतनी महंगा है, मेरे बच्चों को दूध के लिए भी मैं लास्ट में देखता हूँ, महीना एंड में मेरे को पैसा की शॉर्ट हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हो भले मैं बैंक मैनेजर हूँ। तो बाबा ने हम सभी समर्पित बच्चों को, आप बाहर जाओ क्या गर्मी, क्या धूल मिट्टी, कैसे हालत, 52-53 डिग्री कहाँ कहाँ है, पूरा भून जाओगे, मैं बता रहा हूं ऐसे हालत, इतने पसीना, ऐसे हालत में लोग जी रहे हैं सोच नहीं सकते हो। बाबा ने इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर जगह पे हमें रखा। एक आईएएस ऑफिसर आया था हमारे हॉस्पिटल में, एक सिंपल भाई है जो साधारण सेवा करते हैं हॉस्पिटल में, 4 भाई कमरे में रहते थे, उसके कमरे में आईएएस ऑफिसर, उसके क्लासमेट था स्कूल का, तो उसके कमरे में गया, तो मुझे संकोच हो रहा था, वो भाई सुना रहा था कि संकोच हो रहा था, आईएएस ऑफिसर आया मेरे कमरे में, एक खटिया में कैसे बैठा, मेरे खटिया में बैठा, बोला कि तू भाई मेरे से लाख गुणा सुखी है, मेरा जीवन बहुत कैसा है मैं जानता हूं, तुम लोग यहां बहुत सुखी जीवन जी रहे हो। क्योंकि कोई राजकुमार भी होगा उसके जो वेटर आएगा एक कप चाय देगा, आप तो नल का खोलो जितना पीना है पी जाओ, जितना दूध पीना है पी जाओ, जितना चाय पीना है पी जाओ, जो भी पीना है, बाबा के घर में कोई कमी है कुछ भी? कोई भी कितना भी बड़ा राजकुमार हो 2 बजे की चाय बना के कोई देगा? जाओ देखो बाबा के घर में 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे जो चाहो सब रेडी, एकदम एक्यूरेट टाइम में 8 बजते ही थेपला नहीं खाओ, ठीक है सिंपल रोटी खाओ, ठीक नहीं खिचड़ी खाओ, इतने वेराइटी कौन बना के देगा कहां किसके घर में, जाओ तो देखो। तो बाबा हमें राजकुमार क्या, राजकुमार कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कितने बड़े बड़े ऑफिसर कोई भी है, कितना लाखों रुपया भले कमाता होगा, जाके देख लो उनका जीवन क्या है। तो बाबा ने हमें जिस प्रकार भोजन, ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं, जिस प्रकार हमें जीवन दिए हैं, अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा बोझ है। मैं कहूंगा यहाँ अगर बाहर दुनिया में अगर कहीं नौकरी करते, क्लास वन ऑफिसर होते भी इतना सुख हमें नहीं मिलता, मैं बता रहा हूँ यहाँ जितना सुख से बाबा रखा है। तो 8 घंटा मिनिमम सेवा हमें करने की आवश्यकता है, नहीं तो बोझा चढ़ेगा। तो 8 घंटा अपने लिए, 8 घंटा सेवा, फिर भी 8 घंटा बचता है, क्या करें वो 8 घंटा? वो 8 घंटा अपने लिए में सोना है और 8 घंटा बचता है। जो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए वो 8 घंटा परमार्थ के लिए, अर्थात ईश्वरीय सेवा के लिए। बाबा कहते हैं 8 घंटा सर ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, मैं सुप्रीम गवर्नमेंट हूं, मेरे लिए 8 घंटा दो। तो वो 8 घंटा बाबा के लिए, उसमें सेवा में लगाने हैं। अगर हम बाबा के जीवन, अपने जीवन को समर्पित किए हैं, तो हमें तो 16 घंटा सेवा करने है, 16 घंटा करना है हमें, है ना? नहीं, लोग दुनिया में नौकरी करके, धंधा धोरी करके, टाइम निकाल के घर में सेंटर में आके झाड़ू पूछा करते हैं, सेंटर की सब सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम 8 घंटा करके अगर कहते हैं हाँ मेरी तो सेवा हो गई, वो तो जो बाबा खिला रहा है, पिला रहा है, यहाँ रख रहा है, उसका ही वो रिटर्न है, बाकी सेवा कहाँ क्या? तो जो समर्पित है उनको तो 16 घंटा सेवा करने की आवश्यकता है, तो ही हम दुनिया वालों के साथ कम्पीट कर सकते हैं। नहीं तो बाबा ने इसलिए तो कहा जो समर्पित हो जाता है, ऐसा नहीं कि उच्च पद मिलेगा, जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनका भी नंबर 108 में है। ताली तो बजाओ, ताली तो बजाओ। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि जो मधुबन में रहते हैं, हम तो बाबा के छोटे छोटे बच्चे हैं। माँ बाप के हमेशा दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक छोटे छोटे बच्चे, एक बड़े बड़े बच्चे। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लुढ़कते रहते हैं, तो माँ बाप अपना गोदी में रखे, खिला पिला के, मालिश पालिश करके उसको ठीक करके संभाल दे। और जो बड़े बच्चे होते हैं, जा 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 कमा के ला जा। तो आप सभी जो बाहर रहते हो, बाबा के बड़े बड़े बच्चे हो, हम तो छोटे छोटे, बाबा जानते हैं ये बाहर जाएंगे लुढ़क पड़ेंगे, इसलिए बाबा हमें खिला पिला के मालिश करके यहाँ रखा है। आप सभी महावीर महावीरनिया हो, जानते हो। तो इसलिए कहने का मतलब है हमें तो 16 घंटा सेवा करने की आवश्यकता है। तो 8 घंटा अपने लिए, 8 घंटा आजीविका के लिए, 8 घंटा परमार्थ के लिए। तो 8 घंटे जो अपने लिए है वो कैसे व्यवस्थित करना है, कितना घंटा सोना चाहिए, इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। जितने डॉक्टर को पूछेंगे इतनी बातें कहेंगे, जितने डॉक्टर को पूछेंगे इतनी बातें, कई डॉक्टर कहेंगे 8 घंटा सोना चाहिए कम से कम। नहीं देखो, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, हमें सबसे बड़े सुप्रीम सर्जन तो बाबा है हमारा, है ना? नहीं, आज बाबा ने जो कहा है वो आज प्रमाण करके डॉक्टर बता रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च करके अभी कह रहे हैं कि रात को 10 बजे से लेकर सवेरे 4 बजे तक समय सोने का है। इस समय जो जागता है उसको हार्ट अटैक होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा सुनिश्चित, आज नहीं तो कल, डायबिटीज होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो 10 बजे से 4 बजे तक समय सोने का समय है। आज अधिकतर लोगों के जीवन देख लो कैसे उल्लू की तरह जीवन पूरा। मैं थोड़े दिन पहले उल्लासनगर गया था, रात को 1:30 बजे ट्रेन पहुंचा, कल्याण में उतर के मैं उल्लासनगर जा रहा था, मैं सोच में पड़ गया दिन का 1:30 बजा है कि रात का 1:30 बजा है, क्योंकि रास्ता पूरा फुल, कोई पानी पूरी खा रहा है, कोई भेलपूरी खा रहा है, पूरा दुकान बाजार फुल, पूरा खुला है। मैं सोच में पड़ गया एक दिन की रात है, लोगों की जीवन उल्लू की तरह है। तो हम तो रात को बाबा ने इसलिए दिनचर्या बनाया 10 बजे सो जाओ, 3:30 बजे उठो। लेकिन आज लोगों की ऐसी हालत है, एक भाई नया नया ज्ञान में चले तो मुझे आके कहते हैं भाई जी क्या करूं, रात को नींद नहीं आती है, बहुत दिन की आदत है ना, नींद नहीं आती। बोले क्या अभ्यास करो हो जाएगा। नहीं मैं 10 बजे खटिया में जाता हूं, लेकिन 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, इस करवट उस करवट देखता रहता हूं, घड़ी नींद नहीं आती। 3 बज जाता है, 3:30 बज जाता है, अलार्म लगा, उसमें आजकल गीत वाला है ना अलार्म, गीत ऑटोमेटिक बजता है हर ट्रैफिक कंट्रोल का। कहता है 3:30 बजे जब गीत बजता है, अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडले, सो जा तो मैं सो जाता हूँ। कहता है 3:30 बजे सो जाता हूँ मैं। नहीं, दिन में नहीं सुना है। अगर जिसको रात को नींद नहीं आती, दिन में बिल्कुल नहीं सुना है। और एक्सरसाइज अच्छी तरह से करना है तो ऑटोमेटिकली नींद आएगी। क्यों नींद नहीं आएगी? थोड़े दिन दिनचर्या बहुत दिनों से गड़बड़ है तो टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। फिर तो हमें 10-10:30 बजे तक सो जाना चाहिए। मैं हमारे जगदीश भाई जी, जो हमारे मुख्य प्रवक्ता, इतने सारी किताब जो बाबा की लिखे हैं, उन्होंने कहा मैं बाबा को देखता था। सर्फ बाबा 2 बजे उठते थे तो मैं उससे पहले नहा धो के जाके बाबा को गुड मॉर्निंग करता था 2 बजे। तो मेरे जीवन में मैं 2 बजे से पहले 35 साल तक उठा हूं, 2 बजे से पहले। देखिए, आपको जल्दी उठने के लिए आपको स्वास्थ्य का संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। किसी को देखे एकदम कॉपी करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। बाबा को कंप्लीट नॉलेज था हमारा शरीर को कैसे देख। आज हैरान होंगे, आज कितने सारे डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं डायबिटीज के साथ, ऐसी हालत लेके कि सोच नहीं सकते हो। बाबा को खुद को डायबिटीज होते हुए भी बाबा 93 एज तक एकदम स्ट्रेट, बाबा को कुछ भी नहीं हुआ। चश्मा पहनना नहीं पड़ा, डंडा पकड़ना नहीं पड़ा, बाबा एकदम बिल्कुल अपना स्वास्थ्य को ऐसा संभाल के रखे थे। बाबा को नॉलेज था, हमें नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। और बाबा को कॉपी करेंगे तो फिर गड़बड़ होगा सारा। तो बाबा ने जो नियम बनाया है कि 3:30 बजे उठना है, वो पहले पक्का करना है, एक दिन भी मिस ना हो। फिर हम 15 मिनट पहले उठे, फिर थोड़े दिन के बाद फिर 15 मिनट पहले उठे, ऐसे अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन फिर बिल्कुल आपको नशा चढ़ गया, यहाँ से जाके बाबा उठते मैं उठूंगा 2 बजे, फिर ऐसी एसिडिटी होगी, ऐसे फिर गड़बड़ होगा, फिर बीमार हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना होता। तो मैं जगदीश भाई जी को पूछा था कि भाई साहब कितना घंटा सोना चाहिए, क्योंकि मैं खुद सब एक्सपेरिमेंट करके देखा हूं, सब प्रकार का एक्सपेरिमेंट, नहीं सोके भी देखा, 1 घंटा सोके देखा, 2 घंटा सोके देखा। कम सोएंगे तो जगदीश भाई कहते थे कि मेरे ख्याल से 5 घंटा कम से कम सोना चाहिए। अगर कम सोएंगे तो बात करते करते सो जाएंगे, कई लोग तो चलते चलते सो जाते हैं, वो भी एक बीमारी है, चलते चलते सो जाएंगे। तो हमारे पब्लिक सेवा है, हम कहीं सन्यासी जैसे गुफा में बैठ के झुटका खाओ कुछ खाओ वो कोई नहीं पूछता। आपको हंसी आएगी, एक सन्यासी ज्ञान में चल रहे थे तो बीके बन गए, ब्रह्मा कुमार बन गए, तो मुझे पर्सनली आके मिले कि डॉक्टर साहब मैं आपको पर्सनली कुछ राय लेना चाहता हूँ। बोले क्या हो? मुझे बोले कि अमृत वेले नींद आती है, मैं क्या करूँ? बोला आप तो सन्यासी हो, आपको तो जल्दी जागने का आदत है, आपको क्यों नींद आती है? कहते आप नहीं समझते हो। बोला कि क्या बात है, आप नहीं समझते हो, हम जो उठते थे पहले हम क्या करते थे, वो मृदंग लेके झांझ लेके पूरा सब पूरा भजन कीर्तन करते थे, तो नींद कैसे आएगी? यहां तो आप कहते चुप बैठो फिर आ जाओ, तो ध्यान कीर्तन करते रहोगे, हिलते रहो तो नींद कैसे जाएगी? तो इसलिए बाबा के जो यहाँ, तो ऐसा ना हो हमें नींद आए। तो 5 घंटा कम से कम सोना चाहिए, 5 घंटा साउंड स्लीप होना चाहिए, अनडिस्टर्ब स्लीप होना चाहिए, तो ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जिसकी नींद कम है या ज्यादा है, उनको आज नहीं तो कल बीपी होगा, आज नहीं तो कल डायबिटीज होगा, आज नहीं तो कल हार्ट अटैक होगा। तो सबसे पहला स्लीप मैनेजमेंट, हमारा नींद ठीक होना चाहिए। बहुत हमें बहुत एकदम नशा होता है तो थोड़े दिन नींद उड़ जाएगी। जैसे बाबा हमेशा कहते थे, बाबा को चिंता लग गई थी बिल्कुल, जैसे स्टूडेंट को एग्जामिनेशन टाइम में नींद आती है, उड़ जाती है नींद बिल्कुल। बहुत चिंता होती है तो किसको नींद उड़ जाती है, लेकिन लंबे समय तक वो स्वास्थ्य के लिए नुकसान करेगा। हमारे भारत में एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ थे, एकदम यंगेस्ट सीईओ, 42 ईयर्स ओनली, अभी अखबार में आता थोड़े दिन पहले, 42 ईयर्स में मासिव हार्ट अटैक, बचा नहीं सके उसको। क्यों? जब देखा गया कि 3 दिन तक वो सोए नहीं थे, ना दिन रात कंपनी का काम कर रहे हैं, 3 दिन तक सोए नहीं, हार्ट अटैक गए। ऐसा नहीं करना है, पागलपना। योगी माना बैलेंस जीवन, अति निद्रा अनिद्रा योगी का लक्षण नहीं है। तो रोज हमें बाबा ने जो बताया कि 10-10:30 बजे तक सो जाओ, 3-3:30 बजे उठो, बहुत अच्छा 5 घंटा सो, साउंड स्लीप होगा तो एकदम सारा दिन चुस्त फुर्त होके किसके साथ ज्ञान सुना रहे हो, आत्मा हो, खुद सो जा रहे हैं, आपका चेहरा देखे उसको तरस आएगा, इसको क्या हो गया। अरे खुशी खुशी से चेहरा ऐसा हो एकदम बिल्कुल, हमको देख के किसी को नशा चढ़े कि मैं भी इन जैसा बनूं। तो इसलिए जब जागो एकदम चुस्त फुर्त एकदम सुंदर जीवन होना चाहिए। तो साउंड स्लिप नहीं होगा तो सुस्ते थके हुए चेहरे ऐसा मरे मरे मुर्दे जैसा, तो हमारे ऊपर लोग तरस खाएंगे। ठीक है, तो 5 घंटा सोना चाहिए, कोई कोई को 6 घंटा भी सोना पड़ता है, भले सोए। जैसे उम्र बढ़ता जाएगा नींद कम होती जाएगी, 4 घंटा सोएंगे तो भी चलेगा। समय का मैनेजमेंट बताया, 8-8 घंटा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट है संपत्ति, हमारे धन को कैसे मैनेज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी बैलेंस नहीं करना आता है ना, टेंशन होगा। आज अधिकतर लोगों को पैसा के लिए टेंशन है, ज्यादा पैसा हो तो टेंशन है, पैसा नहीं हो तो भी टेंशन है। पैसा है तो कहां छिपाएं, कहां करें, क्या करें, नहीं हो तो फिर घर कैसे चलाएं, क्या खाएं, क्या पिए। तो धन तो जरूरी है जीवन में, लेकिन धन के पीछे भागना वो भी ठीक नहीं। बाबा कहते हैं साधन जरूरी है जीवन में, लेकिन इसके पीछे ही भागते रहो पूरा दिन रात मशीन की तरह, सब कुछ भूल जाओ, अपना पैसा पैसा पैसा, एक दिन रख लिया पूरा करोड़ों, मर गया, गया सब। बहुत एक सुंदर एक कहानी है, एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत करोड़ों रुपया कमाया था, बहुत। तो आखिर एक दिन बीमार हो गया, बुढ़ा हो गया था, बीमार हो गया। तो यमराज आ गए, यमराज कहते सेठ जी चलो टाइम हो गया। तो कहते सेठ जी कहते अरे यमराज मेरे पास बहुत पैसा है, ले लो 10-20 करोड़ ले लो, मुझे 1 साल कम से कम टाइम दो और। तो यमराज कहते हैं समय हो गया है, टाइम वेस्ट मत करो, चलो इट इज द टाइम टू पैक अप, चलो। यमराज 50 करोड़ दे देता हूं, 1 महीना दो मुझे। तो यमराज कहते बोला ना टाइम हो गया, डोंट वेस्ट योर टाइम, चलो जल्दी मेरी सारी संपत्ति ले जाओ, मुझे 1 घंटा टाइम दो। नो, सेठ जी रोने लगे, कहते हैं मेरा आखिरी एक इच्छा है यमराज, मुझे एक खत लिखने का टाइम दो। कहता है यमराज कहते ओके। तो एक लेटर लिखता है सेठ, क्या लिखता है कि ये खत लिखने पढ़ने वालों को मेरा नम्र निवेदन है, जो भी ये पढ़ेगा सबको पढ़ाना जरूरी है। दोस्तों जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, जब आखिर समय आता है कुछ भी काम में आने वाला नहीं है, इसलिए जीवन का आनंद लो। पैसा 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 होके क्या करना है, तो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और अपने ईश्वरीय सेवा करके परमार्थ द्वारा बाबा के साथ आके देखो मधुबन आते हैं कितना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है नहीं। वहां नौकरी नौकरी 24 घंटा, छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती, पड़े रहो नर्क में मरे रहो। मुझे तो जब भी टाइम मिलता था मैं भाग के आता था, मैं नौकरी करता था, ऐसे स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट से नौकरी छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब भी टाइम मिलता भाग के आ जाता था। कई बार तो वो बहनों को सीएप करने आता था, देखा एक दो भाई नहीं आ रहे, सीटें खाली है, ऐसे ही भाग के आ गया, रास्ते में कुर्ते पैजामा खरीदा। तो क्योंकि हमारे जगदीश भाई क्या कहते थे जानते हो, जगदीश भाई कहते थे एक जीरो में कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यू मल्टीप्लाई एनी डिजिट टू जीरो इट विल बिकम जीरो। तो बाबा है जीरो, मधुबन है जीरो, द मल्टीपल टाइम विल कम टू मधुबन देन ओनली विल बिकम जीरो, नहीं तो नहीं हो सकते हो। तो मैं जब भी मौका मिलता था इधर भाग के आ जाता था। मैं 5 साल नौकरी किया हूं, 5 साल में 13 बार आया था, और 13 बार आके 13 हो गया, और तो नहीं जाना है। ऐसा लगता था मुझे बाबा के कमरे से छुट्टी लेके जब जाता था रो रो के जाता था हमेशा, बाबा नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे, ऐसा लगता था। तो मैं 86 में नॉलेज में ज्ञान में आया। तब उन दिनों में तो हॉस्पिटल नहीं था, ज्ञान स्वर नहीं था, कुछ भी नहीं था। 30 साल हुआ तो उस समय खाली दादी थे, दादी जाते समय सबको विदाई देते थे, ऐसा एक भी कोई नहीं होगा जो रो के यहां से नहीं जाता होगा। जो प्यार हमने पाया वो कभी भूल नहीं सकते। चलो बाबा को 2 मिनट याद करते हैं। रहा था हमारी संपत्ति, जितने भी धन संपत्ति है, जो भी हमें तनख्वाह मिलता है, जो भी हमारे रिसोर्सेस है, इसको हम कैसे सदुपयोग करें। बाबा ने कहा 3 बातें अगेन, कुछ अपने लिए, कुछ व्यवहार के लिए, कुछ परमार्थ के लिए। जितने भी हम धन संपत्ति कमाते हैं महीने में, चाहे व्यापार से चाहे नौकरी करके, एक हिस्सा अपने लिए खर्च करो, ठीक तरह से खाओ, ठीक तरह से पहनो, ठीक तरह से। बाबा ने हमें मीडियम का सिखाया, मध्यम पंथी, ना नरम ना चरम, एक्सट्रीम नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल एरिस्टोक्रेट जैसा, एकदम नहीं जैसे भिखारी जैसा, मीडियम। तो इसलिए हमारे, लेकिन रॉयल्टी हो, हमारे ड्रेस, हमारे पहनना, जो भी हो, जैसे हो, रॉयल्टी हो, दुनिया की तरह आकर्षक ना हो, सिंपल हो। तो ठीक से पहने, ठीक से खाएं। کیوں کہہ رہا ہوں، اگر بیلنس نہیں رکھیں گے نا بہت مشکل ہوگا. مجھے یاد ہے میں جب نیا نیا نوکری کیا اور گیان میں چل پڑا تو سویرے امرت چلے جاؤ، پھر کلاس میں جاؤ، پھر آ کے تیار ہو کے پھر خود ناشتہ بناؤ، پھر ہاسپٹل دوڑ کے بھاگو، ٹائم نہیں ہو پاتا تھا. کیسے کروں کیا کروں، میکسیمم دن میں کھانا ناشتہ نہیں کرتا تھا، بھاگ کے جاتا تھا. اور پہلے ایک دم ہیلدی باڈی تھا، پورا ایک دم فٹ تھا، تو ایکسرسائز کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں، کچھ بھی ٹائم نہیں. اور ہاسپٹل جاؤ تو ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہو، ایک ہی ساتھ پورا 200-300 مریضوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ہم سادہ سمپل لوگوں کو تو ملتے نہیں ہیں، کوئی کہاں کہاں کھانسی کر رہا ہے، کوئی کیسا. میں 6 مہینہ نوکری کیا تھا کہ نہیں، مجھے ٹی بی ہو گیا، خود کو ٹی بی ہو گیا. 1 سال تک دوائی لینا پڑا، انجیکشن 3 مہینہ تک لینا پڑا. تو میں مدھوبن آیا تو سورج بھائی مجھے دیکھے کہتے ڈاکٹر کیا حال ہو گیا میں بولا بھائی صاحب تو کہتے ارے بیلنس رکھو، کھاؤ پیو اپنے لیے بھی. ارے یوگی بنا ایسا رکھا سکھا ایسا تھوڑی ہے، کھاؤ مست کرو مستی سے. ارے کمار لائف شیر جیسا جیو، مست کھاؤ ٹھیک سے، یہ کرو. کیا یہ کر کے رکھے ہو، کیسے دکھ رہے ہو دیکھو. تو کئی تو ایک دم خراب نہ چھوڑ دیں گے، گال ایسا اندر گھسا ہوا ہے، دیکھو تو ترس پڑے گا دیکھنے سے، رحم آئے گا. ایسا نہیں، ٹھیک سے کھانا کھاؤ، مست رہو، فٹ رہو ایک دم بالکل. ہمارے جو بھی ہے اپنے لیے ریسورسز کو اپنے لیے پرسنل خرچ کرو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، ایک دم بہت 50 جوڑی کپڑے رکھو، اتنا سارا خرچ. ایسا نہیں، بابا نے جو میڈیم بتایا ایسے ہی جیون جینا، ٹھیک ہے، اپنے لیے خرچ کرنا. دوسرا اپنے پریوار والوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اس میں بھی ہماری ریسپانسبلٹی ہمارے ماں باپ کے لیے بھی ہے. ایسے نہیں کہ خالی اپنے بچے اس کو سنبھالنا، ماں باپ کو نہیں پوچھنا. آج کل بہت آپ سماج کی حالت کو دیکھو گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کیا کیا ہو رہا ہے. سمے نہیں ہے، اور 10 منٹ لے سکتا نا، اوکے 9:45 تک. تو آج ہمارے بھارت کا کلچر بہت بگڑ گیا ہے، بہت بہت بہت. ہم پہلے ایک جوائنٹ فیملی ہو کے رہتے تھے، دادا دادی نانا نانی ہو کے سب مل جل کے پریم پیار سے رہتے تھے. آج کل اکیلے اکیلے سب رہتے ہیں، سب جیون ایسا ہے کہ بات مت پوچھو. ہمارے دیش میں اولڈ ایج ہوم کبھی نام نہیں سنے ہوں گے، ہاسٹل کبھی نام نہیں سنے ہوں گے، آج کل دیکھو کیسا ہے. تھوڑے سے بڑے ہو گئے بچے، چل پڑے ماں باپ، بڈھا بڈھی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کچھ نہیں، دیکھنے والا نہیں. ایسے حالت ہے کہ بہت خراب ہے. ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. ایک بار ایک فیملی ایسے رہتے تھے، ہسبینڈ وائف، چھوٹا سا بچہ اور ایک بڈھی ماں رہتی تھی. تو آج پاریوارک جیون کیسا ہو گیا ہے میں سناتا ہوں. تو ایک دن شام کو کہیں پارٹی تھی، تو ہسبینڈ وائف اور بچہ تینوں ریڈی ہو کے، وہ بہو کہتی ہے اس کی ساسو ماں کو، ماں آج ہم ایک پارٹی میں جا رہے ہیں، گھر میں یہ سب چاول فاول ہے، دال فال ہے، تو رات کو کھانا بنا کے کھا کے چلا رہنا، ہم لیٹ آئیں گے رات کو. تو گاؤں کی ماں تھی، کہتی ہے بیٹی مجھے تو یہ گیس ویس سب آتا نہیں، میں کبھی کیا نہیں ہوں اس میں، مجھے کچھ نہیں آتا ہے. تو بیٹا کہتا ہے وہ بغل میں ایک مندر ہے ادھر، وہاں روز رات کو لنگر لگتا ہے، جا کھا جانا ادھر، کھا کے آ جانا. اور چل پڑے سبھی. کیسا لگا ہوگا ممی کو سوچو. تو راستے میں جا رہے ہیں گاڑی میں، وہ اتنا چھوٹا سا بچہ تھا تو سن رہا تھا. تو بیٹا کہتا ہے پاپا پاپا ممی میں جب بڑا ہوں گا، ایک آفیسر بنوں گا نا، ایک مندر کے بغل میں میرا بنگلو بناؤں گا. تو اس کی ماں کہتے کیوں، کہتا کہ تم لوگ بھی بڈھے ہو جاؤ گے نا، میں بھی پارٹی میں جاؤں گا، تم کو بھی کھانا پڑے گا، بغل میں کھاؤ گے تم سبھی. تو کہنے کا مطلب ہے آج کس پرکار کا کیسا ہو گیا سوچ نہیں سکتے ہو. تو بڑے ہو جانے کے بعد ماں باپ کو نہیں پوچھتے ہیں، بالکل غلط، بوجھ چڑھ گیا. جو ماں باپ کو سنتوشت نہیں کیا وہ کبھی گیان میں ٹھیک سے چل ہی نہیں پائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو بد دعا لگ جاتا. تو اس لیے ہماری دادی ماں جب پرکاش منی دادی تھی، ہم جب ہاسپٹل شروع ہوا، ہم آئے نا، سب کو ایک ایک کو پوچھے تمہارے پتا جی کیا کرتے ہیں، تمہارے ماتا جی کیا کرتے، تم کتنا پیسہ کماتے تھے، گھر میں دیتے تھے کہ نہیں، کیا کرتے تھے، سب کو سنتوشت کرو، خوش کرو. تو ہم جتنا بھی کماتے ہیں خود اچھی طرح سے پہلے کھاؤ پیو، پہلے سو سیوا، بعد میں بھی سو سیوا، پھر گھر میں اپنے پریوار کو سنبھالتے ہوئے ماں باپ کے لیے بھی. ان کا قرض تو کبھی اتار کوئی نہیں سکتا ہے، ان کی سیوا میں لگا، اور جتنا بچتا ہے اسے تھوڑا بہت بھوشیہ کے لیے بھی رکھو، کیونکہ اچانک کچھ ہوتا ہے تو کس کو مانگو گے، तो थोड़ा बहुत भविष्य के लिए थोड़ा बहुत तो रखना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। फिर बाकी रहा परमार्थ, परमार्थ में ईश्वरीय सेवा में लगाना है। बाबा कहते तुम 21 जन्म के लिए तुम्हें रिटर्न देगा, बाबा को भी अपना बच्चा बनाया है ना, तो बाबा के लिए भी तो कुछ निकलना पड़ेगा। कुमार जीवन में भी हमारी दादी पूछती थी, कुमार सब बाबा को बच्चे बनाए हो, कितना हिस्सा निकालते हो? तो ऐसे नहीं कि इक्वली डिवाइड करो, 1000 रुपया मिला तो 300 300 300, ऐसा कर, ऐसा कोई बात नहीं है। अपने लिए कितना, घर परिवार के लिए कितना चाहिए, फिर कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत बाबा के लिए बचाना है, और बाबा के लिए भी जितना निकालते हो उसमें भी 3 हिस्सा करना है। कुछ वहां जहां जिस लोकल सेंटर में आप पालना आपकी मिलती है उसमें हर महीने के लिए खर्च करना है, कुछ मधुवन के लिए रखना है, कभी आएंगे तो मधुवन में महायज्ञ कुंड में डालना है, कुछ कभी कभी सेवा अचानक आ जाती है, कुछ होता है कि होता है मेला लगाते हैं, कुछ होता है उस समय भी, तो ऐसे परमार्थ का भी थोड़ा हिस्सा लगा के अपने जो भी संपत्ति है उसको डिवाइड करना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। लास्ट है संपत्ति स्वास्थ्य, तो समय संपत्ति स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए भी 3 बातें बताऊंगा। 3 बातें अगर जीवन में धारण करेंगे हेल्दी रहेंगे। कौन सी 3 बातें? सबसे पहला हमारा भोजन। 90% बीमारियां आज मैं कहूंगा हमारे खान पान को सुधार दिया जाए तो हमारी बीमारी खत्म हो सकती है, 90%। बाबा के बच्चे निरोगी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कहते हैं राजयोग से 21 जन्म निरोगी बनोगे और खुद ही देखो तो बीमार है, कौन मानेगा? इसलिए बाहर के डॉक्टर है ना, आपको तो नहीं सुनाएंगे कोई, हमको सुनाते हैं। आपके यहाँ बहुत सारे भाई बहन सब बीमार है, ठीक नहीं है, आपका जीवन बैलेंस नहीं है। तो हमारे भोजन कैसा होना चाहिए? एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आई थी, आईपीएस ऑफिसर आई थी एक लेडी, ज्ञान सरोवर में कोई दिखा के लेके आए, वहां कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा था, वहां वीआईपी डाइनिंग हॉल में उसको खिला के लेके हॉस्पिटल में आके मेरे से कोई मिला। वो लेडी तो आधा घंटा मुझे लेक्चर दी, कहते आप लोग सेवा करते हो, अच्छा यहाँ पुलाव भी खाते हो आप, पूरी भी खाते हो, गुलाब जामुन भी खाते हो, समोसा भी खाते हो, सेवा कर रहे हो आप सभी, क्या क्या सुनाई, आधा घंटा तक नॉन स्टॉप भाषण देते गई। तो वास्तव में हमें समझना जरूरी है कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना। मैं जगदीश भाई को शुरू शुरू में जब मधुबन आया था पूछा था, क्योंकि मैं गीता पढ़ता था तो गीता में योगी का भोजन सात्विक भोजन होना चाहिए, सात्विक राजसिक तामसिक भोजन के बारे में गीता में स्पष्ट लिखा है। तो मैं जगदीश भाई को बोला कि भाई साहब यहाँ का हमारा भोजन तो ये सात्विक नहीं है, ये तो पूरा राजसिक भोजन है। तो चुप होके गंभीर होके कहते हैं श्रीमंत भाई बाबा का आश्रम कोई रुखा सुखा सन्यासियों का आश्रम नहीं है, बाबा का घर बच्चों का घर है, मेहमान का घर है। बाबा के बच्चे कोई 3 साल में 4 साल में बाबा के घर में आता है, कोई मेहमान आते हैं बाबा उसको रुखा सुखा रोटी सब्जी खिलाए तो अच्छा लगेगा। हम भी घर में, भारतीय संस्कृति है हमारे घर में, हम भले रोज रुखी सुखी कुछ खाते हैं, कोई आता है तो उसके लिए 2 आइटम तो बनाते ही है। तो बाबा के मेहमानों के लिए बच्चों के लिए सब बनता है, आपको किसने बोला रोज समोसा खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, पूरी खाने के लिए? आपको पता है ना यहाँ सिंपल भी बनता है बिना मिर्ची वाला बिना ये सब वाला, आपको डेली डेली खाने के लिए किसने बोला? और सचमुच मधुबन में जो मिलता है अगर सब खा जाते हम तो फुटबॉल की तरह बन जाते कब से। हमें क्या खाना है क्या पीना हमें समझना जरूरी है। तो इसलिए योगी जीवन में हमें क्या खाएं क्या नहीं खाएं वो भी समझना जरूरी है। हमारे भोजन में देवताएं 56 प्रकार का खाते थे सुनते हैं, आज भी 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को 56 प्रकार देंगे तो कितना खाएगा? इतना इतना कितना खाएगा? थोड़ा 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 थोड़ा। मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा हूँ हमारी दादियों को, हमारी दादियां कहीं भी जाते थे, कितने बार साथ में गया हूँ, बहने भावना से इतने सारे बना देंगे, दादी जस्ट टेस्ट करेगी थोड़ी 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 थोड़ी, इतनी वैरायटी होते भी थोड़ी 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 टेस्ट करेगी। आज भी हम अव्यक्त बाप दादा आते हैं बाबा को भोग लगाते हैं, कितना खिलाते हैं, कितना कितना देखे हो सही, इतना इतना, हम पसंद आया तो 3 कटोरी खा जाएंगे एकदम थाली भर के पूरा कुंभकर्ण जैसा। योगी माना बैलेंस्ड लाइफ, थोड़ा 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 खाओ। हमारे भोजन में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां होनी चाहिए, फल होना चाहिए, कम से कम तेल घी होना चाहिए, लाल मिर्ची तो खाना नहीं चाहिए। बाबा के घर में यहाँ एक माता एक आचार लेके आई थी, बाबा देखते ही कहते मुट्ठी ची फेंक, गंदी सड़ी हुई चीज खा रही है। बाबा कभी भी आचार खाने नहीं देते थे, बिल्कुल नहीं। बहुत कोई एकदम बीमार हो गया है, नहीं जाता है कुछ, तो फ्रेश नींबू का आचार खा ले ठीक है, लेकिन लोगों के तो आचार के बिना नीचे उतरता ही नहीं है, गले से नीचे उतरता नहीं। आचार अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आचार में नमक ज्यादा है, बीपी बढ़ेगा, तेल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, सड़ी हुई चीज है पूरा, ठीक नहीं है, सालों तक सड़ा सड़ा के रखा रहता है। लास्ट में क्या होगा जानते हो? मैं बहुत लोगों को मौत के समय देखा हूँ, उस समय लोगों को कहता हूँ भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, कभी मुख से भगवान निकलता ही नहीं है। मरते समय कहेंगे फलानी की माँ थोड़ी आचार तो चटा दे, थोड़ी साबूदाना की खिचड़ी तो खिला दे, फिर मरेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ आचार मत खाओ, मैं प्रचार करता हूँ आचार मत खाओ, तुम्हारे विचार बदलेंगे। गंदी हुई चीजें नहीं, फ्रेश चीजें खाओ, कम खाओ, दिन में चार पांच, तीन लीटर चार लीटर पानी पी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं। किसका किडनी खराब है तो अलग बात है, सवेरे उठते ही गुनगुना पानी एक लीटर पी जाओ, फिर थोड़ा टहलो, थोड़ा ऐसे करो, फिर एक लीटर पी जाओ, देखो एकदम पेट साफ हो जाएगा। पानी ही कम पीते हैं इसलिए सब बीमारियां, तो पानी खूब पीना चाहिए, सब्जियां खूब खानी चाहिए, कम तेल कम तली हुई। कभी कभी कोई फंक्शन हुआ कुछ हुआ तो एक पीस खा लिया ठीक है, एक समोसा खाने से दो घंटा लगेगा हजम करने के लिए, चार समोसा खा लिया तो दौड़े रहो आठ घंटा। नहीं, कम खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कम 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 खाएं। तो हमारा भोजन कम कम चार बार खाना चाहिए। बाबा ने जो नियम बनाया है, सवेरे नाश्ता 9 बजे तक हो जाना चाहिए, लंच 12-1 बजे तक, शाम को हल्का सा कोई नाश्ता 5 बजे जैसे खाते हैं हम यहाँ, फिर रात को 8-9 बजे तक, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कई लोग कहते हैं 12 बजे तक पानी नहीं पीना, अरे पानी नहीं पीना बाबा ने कभी कहा है? अगर ऐसे फिर मधुबन में क्यों नियम ऐसा बनाया? सवेरे सवेरे पानी ही नहीं पियो 12 बजे तक तो कैसा हालत होगा? सब बीमारियां होगी, बिल्कुल कभी नहीं, किसी का नहीं सुना। फॉलो फादर, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं कहा बाबा ने कभी भी, बिल्कुल नहीं, किसी का नहीं सुना, मैं आपको बता रहा हूँ। कम कम खाओ, कोई बीमारी नहीं होगी। देखना है हमारे दादा दादी क्या खाते थे, वही हमें खाना है। आजकल के सब बाजार की चीजें बिल्कुल टच नहीं करना, कुछ भी नहीं होता आजकल, मशीन मेड कहते हैं, जानते हो उसमें प्याज लहसुन भी होता है। मैं फ्लाइट में जाता हूँ, वहाँ बिस्किट देते हैं, बगल में खाते हैं लोग, वहां से लहसुन का बदबू आता है। मैं देखा एक दिन, तो देखा उसने लिखा है गार्लिक। कुछ नहीं खाना है, बाजार की चीजें बिल्कुल नहीं, कहते हैं नॉन टच टेक्निक से होता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब सोचो बाबा होते तो खाते, हमारी दादियां खाई, नहीं खाना। आजकल बिस्किट ये सब कोल्ड ड्रिंक सब चलता है, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ बीमारी होगी। तो भोजन ठीक, और दूसरा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यायाम करना। पहले जमाने में सब कुछ करना पड़ता था, सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता था। यहाँ मधुबन में हमने देखा है, कोई गर्म पानी पाने की व्यवस्था नहीं थी, सब बाहर जलता था पूरा सारा, वहां से बकेट बकेट पानी लाके बाथरूम में जाके नहाना पड़ता था, सब कुछ मैनुअली करना पड़ता। आजकल तो बटन दबाओ घर हो गया सब कुछ, इसलिए सब बीमारी, फिर सब मोटे होते जा रहे। मैक्सिमम माताएं अभी मोटी होती जा रही है, पहले चक्की पीसती थी, सब कुछ करते थे, कितना फिट रहते थे। फिर भी भाई तो ठीक है, सभी ठीक नहीं है, तो हमारा बॉडी वेट कैसा है देखना है। अगर मोटे हैं तो डिसर्विस है, हम लक्ष्मीनारायण जैसा बनना चाहते हैं और इतना अभी इतना मोटू पोटू। देखे हो लक्ष्मीनारायण कभी मोटू मोटू? तो फिर क्यों? तो रोज मेहनत करना है सारा। एक बार दादी को कई आके कहते हैं, दादी हम क्या एक्सरसाइज करें? तो चुप, सब झाड़ू पोछा लगाओ, सब करो घर का काम, सब नौकर चाकर कुछ नहीं रखो, फिट हो जाओगे। तो इसलिए रोज वॉकिंग करो, सब काम करो, मेहनत करो, कम खाओ तो कम मोटे नहीं होंगे। बॉडी वेट मोटा हुआ तो सब बीमारियां होगा, कुछ नहीं होगा तो घुटने चेंज करना पड़ेगा, लाखों रुपया देके स्टील का लगाना पड़ेगा। तीसरी बात है मेडिटेशन, अच्छी तरह से योग लगाएंगे मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा। अधिकतर लोगों को आजकल डिप्रेशन, इतने लोगों को डिप्रेशन, बाबा के बच्चों को भी, आप सोच नहीं सकते हो, सब बीमारियां। फिर योग अगर नहीं सीखा ठीक से तो सब जीरो। अच्छी तरह से बाबा को याद करके अंत में कुछ नहीं होगा, सब धन संपत्ति एक सेकंड में दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत काल से अगर योग नहीं लगा कि ठीक अवस्था नहीं बनाए, विक्रम दग्ध नहीं किया, तो उच्च पद नहीं मिलेगा, धर्मराज की पुरी में सजा खा के जाने पड़े। तो योग से ही विक्रम विनष्ट होगा, योग से ही निरोगी बनेंगे। अच्छी तरह से सवेरे शाम योग करना है तो ही हेल्थ ठीक रहेगा। मन ठीक होगा तो तन ठीक होगा। 90% बीमारियां आज मन ठीक नहीं, इसलिए तो अच्छी तरह से बाबा को प्यार से गदगद हो जाना चाहिए। बाबा को, बाबा के गुणगान करते हुए, बाबा के एहसान को याद करते हुए, बाबा के उपकार को याद करते हुए बाबा एकदम दिल में गदगद होके आनंद अश्रु झरझर हो जाना चाहिए, ऐसे तन्मय हो जाना चाहिए, तल्लीन हो जाना चाहिए। तो खानपान, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, तीन बातों का जो बैलेंस रखेगा कभी बीमार नहीं होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ठीक है, आप सभी को बधाई हो। तो जीवन में हम सभी मास्टर नटराज बने, बैलेंस की कला दुनिया को सिखाए। ठीक है, हमारे जीवन बाबा ने कहा है अंत में आप सभी को देख के भगवान को याद आएगा। लोग सब बाबा की प्रत्यक्षता हमारे जीवन से होगा, हमारे सकल सूरत से होगा, लोग हमको देख के पहचानेंगे बाबा को। तो क्या हमारे जीवन ऐसा है, देखें हम। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। अभी रात को एक्सरसाइज करने का समय नहीं, और कभी सिखाएंगे, अभी बाद में सिखाएंगे कभी। हाँ ओके, चलो बाबा को याद करें, दो मिनट सभी, दो मिनट बाबा को याद करके चले। थैंक्स देके बाबा की सभी अपने सारे दिन की सब समाचार सुना के ओम शांति, गुड नाइट, फिर निश्चिंत होकर सो जाना।